ततस्य सिंहासनोपरि, फिर उस सिंहासन के ऊपर आत्मानम सुखासीनम, अपने आप को सुखपूर्वक आसीन कर लेते हैं, मैंने खुद बैठ जाते हैं उस सिंहासन पर, फिर शांत दांत रागत द्वेषादि रहितम। और कैसे हैं अपन? शांत दांत यानि संयत और रागत द्वेष आदि से रहित, इस प्रकार अपना ध्यान लगाते हैं। ये हो गई पार्थिवी धारणा। इसके आगे ततोसो ध्यानी, फिर वह ध्यानी निज नाभि मंडल, उसी आसन पर बैठे बैठे अपने नाभि मंडल पर मनोज्ञ कमनीय षोडश उन्नत पत्रकम कमलम, सुंदर और कमनीय यानी मन को प्रिय लगने वाले 16 पंखुड़ियों वाले ऊंचे 16 ऊंची पंखुड़ियों वाले कमल का ध्यान करते अपनी नाभि में। तस्य कमलस्य पत्रम पत्रम प्रति स्वरम, उस कमल के एक एक पत्ते पर एक एक स्वर रख देते हैं। एवं षोडश स्वरान स्मरे, इस प्रकार 16 स्वरों का स्मरण करते हैं। अ आ ई ई जो पहले आए थे ना, उसमें अम अह को और मिला लिया है, इस प्रकार 16 का वहाँ पर पंखुड़ियों पर लगा लेते हैं। फिर तत्कर्णिकाया मध्य, और उस कर्णिका के मध्य में महामंत्र विस्फुरंतम ऊर्ध्वरेफम कलाबिंदु सहितम चंद्र कोटिकांत्या व्याप्त दिंगमुखम अर्हम इति चिंतित, अर्हम उसकी कर्णिका पर चिंतन करते हैं। कैसा होता है अर्हम? ऊर्ध्वरेफम ऊपर एक रेफ होती है, कलाबिंदु सहितम कलाबिंदु सहित होता है, मतलब कलाबिंदु सहित का अर्थ हो गया चंद्रबिंदु। यहाँ पर बनाया है उन्होंने, चंद्रबिंदु नहीं बनाई लेकिन बनाना है। और चंद्र कोटि कांत्या, करोड़ चंद्रमाओं की कांति के कारण व्याप्त दिंगमुखम, सारे दिशाओं के मुख को जिसने व्याप्त कर लिया है, ऐसे अरहम का चिंतन करते हैं। ततस तस्यारहम इत्यक्षरस्य रेफात, फिर उस अरहम की रेप से निर्गच्छन्ति धूम शिखाम स्मरेत, एक धूम धुएं की शिखा का स्मरण करते हैं, मतलब उसके रेप में से धुआं निकलता हुआ देखते हैं। ततस्तत् पश्चात, फिर उसके पश्चात स्फुलिंग पंक्ति ही अग्निकणान चिंते, फिर स्फुलिंग यानी चिंगारियों की पंक्तियां निकलती हुई और अग्नि के कण दिखने लग जाते हैं। तथा ज्वालावलिम, फिर उसके बाद ज्वालाओं की पंक्तियां निकलती, फिर अग्नि ज्वाला श्रेणीम चिंते, अग्नि की ज्वालाओं की श्रेणी का चिंतन करते हैं। तथा उसके बाद तीन ज्वाला कलापेन, फिर उस ज्वालाओं के समूह से वर्धमान इन बढ़ती हुई ज्वालाओं के समूह से हृदय स्थितम कमलम दहति, वो हृदय में स्थित जो कमल है उसको भस्म कर डालते, माने नाभि के कमल से निकलने वाली अरहम की रेफ की ज्वाला है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो हृदय वाले कमल को भस्म कर डालती है। डरना नहीं भाई, आगे बता रहे। तत्कमलम अष्टकर्म निर्माणम अष्टपत्राढ़्यम अधोमुखम, वो हृदय का कमल जो है वो नीचे की तरफ पंखुड़ी किए हुए और उसमें 8 पंखुड़ियां हैं, जिन 8 पंखुड़ियों पर एक में ज्ञानावरण एक दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र, ऐसे 8 कर्म, इसलिए घबराने की बात नहीं थी। अधोमुखम महामंत्रोत्पन्न वैश्वानर उद्धति, उस नीचे वाले महामंत्र से उत्पन्न हुए वैश्वानर यानी अग्नि के द्वारा जल जाते। तथा शरीर से बही त्रिकोणम अग्निमंडल, फिर शरीर के बाहर 3 कोण वाला अग्निमंडल होता है। वन्य बीज समाक्रांतम पर्यन्ते स्वस्तिकांकितम ऊर्ध्वम वायु पुरोद्भूतम निर्धूमं कनक प्रभम, अग्नि रूपी बीज से समाक्रांत, अग्नि बीज किसको कहते हैं? र को। पर्यन्ते स्वस्तिकांकितम, अंत में स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ हो। ऊर्ध्वम वायु पुरोद्भूतम, और ऊपर वायु के वायु का पुर जिसमें उत्पन्न हुआ है लेकिन अब निर्धूमम धुआं नहीं है उसमें, कनक प्रभम स्वर्ण जैसी प्रभा वाला है। अंतर्दहति मंत्रार्चिर बहिर्वन्निपुरम पुरम, वो वन्निपुर जो है मंत्रार्ची, मंत्र की जो अर्ची यानी अग्नि है वो अंतर्दहति और धगत धगति धगत धगिति विस्फूर्जत ज्वाला प्रचय भासुरम, धक 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 धगाती हुई जो अग्नि है धधकती हुई वो अपने ज्वाला के प्रचयों से समूह से प्रकाशमान होकर भस्म कर डालती है। भस्म भावम असौ नीत्वा शरीरम तच्च पंकजम, वो कमल को भी भस्म कर डालती है वो अग्नि, और शरीर को भी भस्म कर डालती है अपने, जो ध्यान लगा रहे ना उनके शरीर को भी भस्म कर डालती है और सब कमल को भी भस्म कर डालती है। फिर क्या बचेगा, ये चिंता होगी ना, देखो आगे क्या बचेगा। दाह्या भावात स्वयं शांतिम, फिर जलाने योग्य वस्तु का अभाव हो जाने के कारण स्वयं शांतिम याति वन्नी शनि शनि इति अग्नि धारणा, फिर अपने आप वो अग्नि भी शांत हो जाती है, ये अग्नि धारणा होगी। फिर अथा पूर्य दिशाकाशम संचरन्तम महाबलम महावेगम स्मरित्यो ध्यानी समीरणम निरंतरम। इसके बाद दिशाओं को और आकाशों, दिशा और आकाश में संचरण करने वाले महाबलवान महावेग युक्त समीरणम, समीरणम का समीर कहते हैं ना, समीर किसको कहते हैं, वायु को, पवन को। एक वो आता है ना छंद, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयाचल की शुचि मंद समीर सुगंध बयार मिली न मिली। समीर शब्द आता है, समीर यानी वायु। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले अरिहंत अरि रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं। तत्र च शीघ्र मुद्धूय तेन प्रबल वायुना। अब वो जो पहले जो राख बन गई थी ना, सब जल भुन करके पूरे राख हो गए थे, जितना कुछ भी नहीं बचा था, तो उसको वो हवा उड़ा देती। अब बोलो, अब वो भी नहीं बची, प्रबल वायुना। तत स्थिरी कृताभ्यास पवनम शांत मानी, फिर स्थिर किया हुआ है अभ्यास जिसने, वह पवन को भी शांत कर देता है। इति मारुति धारणा, इस प्रकार की मारुति धारणा होगी। फिर वारुण्या जल दभ्रातम संवर्षंतम नभस्तला स्थूल धारा व्रजई विद्युत गर्जनई सचिंतई। फिर अब वारुण्य, वारुणी धारणा में क्या करते हैं, जलदब प्रातम बादलों के समूह को संवर्षंतम खूब अच्छी तरह से वर्षा करते हुए नभस्तला आकाश तल से स्थूल धारा व्रजई है, खूब मोटी मोटी धाराओं के समूह द्वारा विद्युत गर्जनी बिजलियों की गर्जना के साथ चिंतन करना है। ततोर्धेन्दु समं कांतम, फिर उसके बाद अर्धचंद्रमा के समान मनोहर पुरम वरुण लांछितम, एक पुर का जो कि वरुण लांछित है, जल के चिन्ह से अंकित है, स्मरित सुधा पय पूरे ही, उसका स्मरण करना है जो अमृत के पय पूर के साथ प्लावयंतम न भूंगणम सारे आकाश रूपी आंगन को भिगा रहा है। तेन ध्यानोत्थ नीरेण दिव्येन प्रबलेन सह प्रक्षालयेच्च निशेषम तद्भस्म काय संभवम। उसके बाद उस ध्यान से उत्पन्न नीर के द्वारा जो कि दिव्य है और अमृतमय है और प्रबल है, उसके द्वारा जो अग्नि से राख बन गई थी और राख हवा में उड़ गई थी, वो जो कुछ भी उसमें और भी थोड़ा बहुत बच गया हो उसको धो डालोगे उस पानी से, उस अमृत की वर्षा से। इति वारुणी, ये वारुणी धारण होगी। ततः योगी स्वात्मानं सर्वज्ञ सदृशं सप्त धातु विनिर्मुक्तं चंद्रकोटि कांति समं सिंहासन आरूढ़ दिव्यातिशय संयुतं कल्याण महिमोपेतं देव वृंदैर अर्चितं कर्म मल कलंक रहितं स्वस्वरूपं चिंतये। उसके बाद योगी अपने आप को, अपने स्वरूप को इस प्रकार से ध्यान में लाए, सर्वज्ञ के समान। अब ये सब चीज़ें साफ हो गई, धुल करके शरीर भी अलग हो गया, कमल भी चला गया, सब चला गया, अब मैं अकेला बच गया हूँ क्षीर समुद्र जैसे विशाल, उसे एक राजू प्रमाण जो ध्यान में समुद्र बनाया था ना उस पर, और सप्त धातु से रहित करोड़ों चंद्रमाओं की कांति के समान सिंहासन पर आरूढ़ और दिव्य अतिशयों से संयुक्त 34 अतिशय है, कल्याणकों की महिमा से संपन्न देव वृंद द्वारा अर्चित कर्म मल कलंक से रहित अपने स्वरूप का ध्यान करना। तेव पुरसायारो झायव्वो निय शरीर गब्बत्थो स्यकरण विपुरंतो अप्पा परम पयसरूपो निय नाहि कमल मज्जे परिठ्यम विस्फुरंत त्रवितेयम जायह जायेह अरह रूपम झाणम तमुण पिंडत्थम। ये पिंडस्थान जायह वी कर्मच्छे भालयले हिय कंठ दे सम्मी जिन रूपम रवितेयम पिंडत्थम मुण जायम्मी। मस्तके वदने कंठे हृदय नाभिमंडले मस्तके वदने कंठे हृदय नाभिमंडले ध्याये चंद्र कलाकारे योगी प्रत्येकमंबुजम। सिद्ध सादृश्यम गत सिक्त मूषिका गर्भ समानम स्वात्मानम ध्यानी ध्याये सिद्ध सुखादिकम लभते। ऐसा ध्यान करने वाले जो योगी हैं वो सिद्ध सुखादिक को प्राप्त कर लेते हैं। इति पिंडस्थ ध्यानम समाप्तम। इस तरह पिंडस्थ ध्यान यहाँ पर समाप्त होता है। अतः रूपस्थ ध्यानम उच्यते। अब रूपस्थ ध्यान जो है वो कहा जाता है। आज दोपहर में हो सकता है क्योंकि चतुर्दशी। प्राचीन प्रतियों में क्या उपलब्ध होता है पाठ? वैसे स्वाहा जो है देवों के लिए सर्प समर्पित किए जाने वाला एक पद है और नमः नमस्कार पद है। तो अगर इनको अपन देवों के देव मान ले या फिर देवों के द्वारा भी अर्चनीय मान ले तो भी अपन स्वाहा बोल करके उस भाव से समर्पित करें तो कोई आपत्ति नहीं है। नमः नमस्कार वाची होता है। वैसे अभी इस पर एक चर्चा भी निकली थी, पत्रक निकला था कि स्वाहा नहीं बोलना चाहिए, नमः बोलना चाहिए। फिर उसका समाधान निकाला था कि स्वाहा बोलना चाहिए, दूसरा पत्रक निकला है। हाँ करते हैं। आज तक ऐसा तो नहीं है उसका अभिप्राय। वहाँ पर चढ़ाते समय ये अभिप्राय नहीं है कि फिर से नहीं खाएंगे। हम इसको खाते रहते हैं लेकिन हमारा निवारण नहीं होता क्षुधा का, इसलिए इसको हम आपके लिए अर्पित करके क्षुधा रोग निवारण की भावना रखते हैं। इस प्रकार का उसका भाव। और स्वाहा बोल करके अर्पित करते हैं। स्वाहा माने देवता के लिए अर्पित करने के लिए वाचक एक अव्यय है। स्वाहा अव्यय है। स्वाहा स्वधा वशट नमः ये सब अव्यय है। कैसा? अभिषेक में स्वाहा बोलते हैं क्या? निर्वपामिति अगर बोल दिया है तो वो निर्माल्य हो गया। नहीं, आठ द्रव्यों में तो निर्वपामिति बोलते हैं, अभिषेक में निर्वपामिति नहीं बोलते। तो निर्वपामिति बोलने पर निर्माल्य होता है वो। हाँ, अब यहाँ प्रसंग देख लीजिए आप। यहाँ देवशास्त्र गुरु की अगर अपन पूजा कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर स्वर्ग के देवों को क्या आप करोगे? नहीं, भगवान को चाहिए या नहीं चाहिए ये यहाँ विवक्षित नहीं है। यहाँ तो ये बताया है कि गृहस्थ का भाव, गृहस्थ नहीं, हम समर्पित होने की भी बात वहां पर नहीं है। वहां पर ये है कि द्रव्य का आलंबन लेकर के गृहस्थ भाव पूजा करना चाहता है, क्योंकि गृहस्थ की विशुद्धि जो होती है वो निरालंब विशुद्धि नहीं हो सकती। निरालंब विशुद्धि मुनियों में होती है, तो इसलिए वो द्रव्य का आलंबन लेकर के अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए पूजा कर रहा है। तो अब उसमें पूजा करते समय द्रव्य चढ़ा रहा है तो द्रव्य इसलिए नहीं चढ़ा रहा है कि भगवान को चाहिए। वो द्रव्य इसलिए चढ़ा रहा है कि मेरे नित्य प्रयोग में आने वाले ये अष्ट द्रव्य हैं, ये भारतीय संस्कृति के प्रतीक द्रव्य हैं। सारे भारत में किसी भी संप्रदाय में आप देखोगे तो ये अष्ट द्रव्य जो होते हैं सम्मान सत्कार में प्रयुक्त होते ही हैं। कब भी कोई मेहमान आता है उसको नहाने के लिए पहले कहते हैं, फिर उसको जब सत्कार करते हैं तो फिर माथे पर वो कोई गंध हल्दी वगैरह कुछ भी लगा कर वो अक्षत लगा देते हैं, माला पहना देते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं मतलब लौकिक विधि में। लेकिन इन द्रव्यों को मैं अगर भगवान की आराधना में लगा रहा हूँ तो फिर मैं अपनी कुछ भावनाएँ जोड़ करके अर्पित करूँगा। और मेरी भावना क्या है, जो भगवान से मैं भा सकता हूँ, सबसे नहीं भा सकता, सौधर्म इंद्र से नहीं कह सकता कि अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निरुपामी, बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि जिसने उस मार्ग को अंगीकार किया और जिसने उस पद को प्राप्त किया है उनके लिए मैं ये अर्पित करके भावना करता हूँ, अक्षतान निर्वपामी थी अक्षय पद प्राप्त है, अर्घ्यम निर्वपामी थी अनर्घ्य पद प्राप्त है। इस प्रकार द्रव्य का आलम्बन लेकर केवल अपनी भावनाओं को विशुद्ध बनाने की प्रक्रिया है। भगवान को चाहिए या नहीं चाहिए वो यहाँ पर विवक्षित नहीं, और फिर भक्त की भावना होती है कि वो कुछ अर्पित करे। जब लौकिक सत्कार विधि में भी आप किसी को सत्कार में कुछ देते हैं तो फिर भगवान की पूजा करते समय भी अपन भगवान के लिए कुछ अर्पित करते हैं। अब वो अर्पित करते समय इन आठ द्रव्यों को विधिवत अर्पित करता है और अर्पित करके अपनी भावना जोड़ लेता है। ये द्रव्य पूजा के साथ भाव पूजा हो गई, द्रव्य आलम्बन रूप है और भाव जो है वो विशुद्धि का कारण है। और कोई बात इसमें ठीक है? रूपस्थ ध्यान बड़ी प्रतिमा 376 पृष्ठ है, नीचे से दूसरी पंक्ति, अथ रूपस्थ ध्यान उच्यते। अब रूपस्थ ध्यान कहा जाता है, ध्यानी समवसरणस्थम जिनेन्द्र चंद्रम चिंतये। ध्यान करने वाले समवसरण में स्थित जिनेन्द्र भगवान का चिंतन करें, जिनेन्द्र चंद्र का चिंतन करें। मानस स्तंभा सरांसित प्रविमल जलसत खातिका पुष्पवाटी प्राकारो नाट्यशाला द्विदयमुपवनम वेदिकांतर्धजाद्या सालहकल्पद्रुमाणां सुपरिवृतवनम शालहकल्पद्रुमाणां सुपरिवृतवनम स्तूपहरिण्यावली च प्राकारः स्फाटिकोन्तर नृसुरमुनिसभा पीठिकाग्रे स्वयंभूः। मानसस्तंभाः, चार दिशाओं में चार मानसस्तंभ होते हैं, फिर सरांसी, फिर सरोवर भी होते हैं, मानसस्तंभ के चारों ओर सरोवर होते हैं, फिर प्रविमल जल सत खातिका, अत्यंत निर्मल जल की खातिका होती है, खातिका मैंने खाई, और पुष्प वाटी, पुष्पों की वाटिका होती है, प्राकारो यानी परकोटे होते हैं उसके, मतलब इसके बाद परकोटा होता है, फिर नाट्यशाला होती है और अद्वितीय उपवन होता है, फिर वेदिका होती है और वेदिका के अंदर ध्वजादि होते हैं, ध्वज आदि, फिर शाला, शाले यानी पुनः परकोटा है प्राकार, फिर शाल के बाद कल्पद्रुमाणाम सुपरिवृत वनम, कल्पद्रुमों का सुपरिवृत अच्छी तरह से जिसपे घेरा है ऐसा एक वन होता है, फिर स्तूप होते हैं, फिर हर्म्यावली माने मार्गों की पंक्ति होती है, अथवा हर्म्य का अर्थ होता है भवन, मकानों की पंक्ति होती है, हर्म्य का अर्थ वैसे भवन होता है, तो उन भवनों की पंक्ति होती है, फिर प्राकार यानी वापस एक परकोटा होता है, और स्फाटिक उस स्फटिक का बना होता है, और अंतर उसके भीतर नृसुर मुनि सभा, मनुष्य देव और मुनियों की सभा, और उस सभा की पीठिका के अग्र पर स्वयंभू हो तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं। ये बहुत ही संक्षिप्त वर्णन हो गया, आदि पुराण का श्लोक है, आदि पुराण में काफ जाते हैं। आदि देवस्य द्वादश योजन प्रमाण, आदिनाथ भगवान का 12 योजन प्रमाण समवसरण था, अजितस्य सार्धैकादश योजन प्रमाण, 11.5 योजन अजितनाथ भगवान शंभव से एकादश योजन मानम इत्यादि क्रमेण शंभवनाथ भगवान का 11 योजन प्रमाण किया इत्यादि के क्रम से आधे आधे योजन तक के कम करते चले जाना है। महावीर से योजन प्रमाण समवसरण महावीर भगवान का एक योजन प्रमाण समवसरण तथा इसी प्रकार विधि क्षेत्र स्थित श्री सीमंदर युगमंदर आदि नाम विधि क्षेत्र में स्थित जो श्री सीमंदर भगवान युगमंदर भगवान है इनके आदि शब्द से और जो कुल मिला के 20 होते हैं इनके समवसरण द्वादश योजन प्रमाण सबके 12 योजन प्रमाण तत्र समवसरण से मध्य उस समवसरण के बीच में तृतीय सिंहासनोपरि तीसरे सिंहासन के ऊपर चतुरंगुलांतरितम स्वयंभूम अर्हंतम चिंतित 4 अंगुल के अंतर मतलब ऊपर में समझ उसको सिंहासन का स्पर्श नहीं करेंगे उसके ऊपर रहेंगे स्वयंभू जो अर्हंत भगवान है उनका ध्यान करना चाहिए तद्यथा आर्हंत महिमा उपेतम सर्वज्ञम परमेश्वरम ध्याये देवेंद्र चंद्रार्क सभांतस्थम स्वयंभुवम कैसा ध्यान करना है कि आर्हंत महिमा उपेतम तीर्थंकर की महिमा से संपन्न सर्वज्ञ परमेश्वर स्वयंभू और देवेंद्र और चंद्र और सूर्य की सभाओं के बीच में स्थित जिनेंद्र भगवान का ध्यान करना चाहिए सर्वातिशय संपूर्णम दिव्य लक्षण लक्षितम अनंत महिमाधारम सयोगी परमेश्वरम सयोगी परमेश्वर कैसे होते हैं तो सब अतिशयों से संपूर्ण रहते हैं दिव्य लक्षणों से लक्षित रहते हैं अनंत महिमाओं के आधार होते हैं सप्तधातु विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी कटाक्षितम सर्वभूत हितं देवं शील शैलेन्द्र शेखरम और सप्त धातुओं से रहित होते हैं मोक्ष लक्ष्मी से कटाक्षित होते हैं अर्थात मोक्ष की संपदा उनकी तरफ देखती रहती है और सर्वभूत हितम सब प्राणियों के लिए हितकारी होते हैं और शील शैलेन्द्र शेखरम शील रूपी शैल अर्थात पर्वत उसका इंद्र यानि सुमेरु शील रूपी सुमेरु पर्वत के शेखर यानि मुकुट है अर्थात सबसे उच्च चूलिका है ऐसे देव इनका ध्यान करना चाहिए तथा भामंडलादि युक्तस्य शुद्ध स्फटिक भासिनः चिंतनंजन रूपस्य रूपस्थं ध्येयमुच्यते भामंडलादिक से युक्त और शुद्ध स्फटिक के समान आभा वाले जो जिनेंद्र भगवान का रूप है उसका चिंतन करना उसको ध्येय बना करके उसका चिंतन करना रूपस्थम उच्यते रूपस्थ कहा जाता है। चतुस्त्रिंशद अतिशयोपेत मष्ट महाप्रातिहार्य विराजित मनंत ज्ञानाद्यनंत चतुष्टय मंडितम द्वादश गणोपेतम जिन रूपम चिंतित ध्यानी जिनेंद्र भगवान के रूप का चिंतन कैसा करना चाहिए ध्यानी को बोले 34 अतिशयों से सहित 8 प्रातिहार्यों से विराजित अनंत ज्ञानादिक चतुष्टयों से मंडित और 12 सभाओं से युक्त गणघाई कम्म महणो ऐसय वर पाढ़ संयुक्तो चाये धवल वर्णो अर्हंतो समवसरणतो ध्रुवम झाणम दुविहम सगयम तह परगयम चम भणियम सगहम सगयम निय अपाणम परगयम चाण परमेठी घनघाती कर्मों का मथन करने वाले अतिशय और वर पाड़ी है उत्कृष्ट प्रातिहारियों से संयुक्त धवल वर्णों धवल वर्ण वाले समवसरण में स्थित अरहंत भगवान का जाए ध्यान करना चाहिए। ये रूपस्थ ध्यान है दो प्रकार का एक स्वगत और दूसरा परगत स्वगत ध्यान तो अपनी आत्मा का ध्यान है और परगत ध्यान जो है अरहंत परमिष्ठि का ध्यान है। इति रूपस्थम तृतीयम ध्यानम समाप्त इस प्रकार तीसरा रूपस्थ ध्यान समाप्त हुआ अथ रूपातीतम ध्यानम कथ्यते रूपातीत ध्यान कहा जाता है अथ रूपे स्त्री भूत चित्त अक्षीण विभ्रम अथ रूपे स्त्री भूत चित्त प्रक्षीण विभ्रम अमूर्तमज मव्यक्तम धातु ध्यातुम प्रक्रमते ततः अब रूप में जिसका चित्त स्त्रीभूत हो गया है और विभ्रम जिसका प्रक्षीण हो चुका है ऐसे साधु अमूर्त अजन्मा और अव्यक्त जो स्वरूप है उसका ध्यान करना प्रारंभ करते हैं, चिदानंदमयं शुद्ध ममूर्धं परमाक्षरं स्मरेद्यत् त्रात्मनात्मानं तद्रूपातीतमिष्यते। रूपातीत ध्यान उसको कहा माना जाता है कि चिदानंदमय चैतन्य और चित्त और आनंदमय शुद्ध अमूर्त परम और अक्षर यानी जिसका क्षरण न होता हो, विनाश न होता हो, ऐसा यत्र जिस ध्यान में आत्मना आत्मनम चिंतित स्मरित अपने द्वारा अपना स्मरण किया जाता है, तत् वह रूपातीतम इष्यते, रूपातीत ध्यान माना जाता है। विचार्येति गुणान् स्वस्य सिद्धानामपि व्यक्तः निराकृत्य गुणैर्भेदं स्वपरात्म शिवात्मनाम इति स्वस्य गुणान् विचारे। इस प्रकार अपने गुणों का विचार करके सिद्धानामपि व्यक्तित है, अब सिद्धों के गुण जो है वो व्यक्त है, प्रकट रूप से है, उसका भी विचार करके फिर गुणों की अपेक्षा से भेदम निराकृत्य भेद को दूर करके स्वपर आत्म शिवात्मनाम अपने और पराई आत्माओं में और मोक्ष गत जो सिद्ध भगवान हैं इनके भेद का निराकरण करके तद्गुणग्राम संपूर्णम तत्स्वभाविक भावितम कृत्वात्मानं ततो ध्यानी योजयेत् परमात्मनि। उनके गुण समूह से संपूर्ण और उनके स्वभाव को अद्वितीय रूप से भावित करके अपनी आत्मा को परमात्मा में ही योजित जोड़ लेना, यानी मैं उसी रूप हूँ बस, इस प्रकार का ध्यान करना। यह प्रमाण नए नूनम स्वतत्वमवबुद्धिते बुद्धिते परमात्मानं सयोगी वीत विभ्रम। जो प्रमाण और नए से अपने स्वरूप को निश्चित रूप से अवबुद्धिते जानते हैं वे योगी भ्रम रहित होकर परमात्मा को भी जान लेते हैं। व्योमाकार मनाकार निष्पन्नम शांतमच्युतम चरमांगात किंचिन कियन न्यूनम चरमांगात कियन न्यूनम स्वप्रदेशैर्घनैः स्थितम्। व्योमाकारम आकाश के समान जिसका आकार माने अमूर्त है, जो आकाश के समान सर्वव्यापी है ऐसा अर्थ नहीं लेना, दृष्टांत में से एक देश भाव ग्रहण करना। व्योमाकार मतलब आकाश जैसा अमूर्त, अनाकारम अब अनाकार का पुद्गल जैसे आकार वाला नहीं है, मूर्त आकार नहीं है, निष्पन्नम अपने आप में परिपक्व शांत और अच्युत यानी जो वहाँ से सिद्ध पद से वापस च्युत होकर संसारी नहीं बन सकते। चरमांगात कियत न्यूनम अंतिम शरीर से कुछ कम कुछ अल्प स्वप्रदेश ही घने स्थितम अपने प्रदेशों के घनीभूत होने के कारण कुछ न्यून होकर के स्थित। लोकाग्र शिखरासीनम शिवीभूत मनामयम पुरुषाकार रमापन्न मप्यमूर्तंच चिंतये। और कैसा चिंतन करना सिद्ध भगवान का, लोकाग्र के शिखर पर आसीन यानी विराजमान शिवीभूतम परम कल्याण रूप हो गए हैं, अनामयम नीरोग हैं और पुरुषाकारम पुरुष के आकार जैसे हैं, पुरुषाकार को प्राप्त होते हुए भी अमूर्तम मूर्त नहीं है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। विनिर्गत मधुच्छिष्ट प्रतिमे मूषिकोदरे यादृक् गगन संस्थानम तदाकारम स्मरेत विभु। इस प्रकार विभु का स्मरण करना चाहिए कि जो विनिर्गत मधुच्छिष्ट प्रतिमे विनिर्गत मधुच्छिष्ट से क्या बात कर रहे हैं, अच्छा मधुच्छिष्ट का अर्थ होता है मोम, ठीक है, तो क्या होता है कि वो मोम में सांचे में ढाल करके प्रतिमा बनाते हैं ना, तो वो सांचा निकाल दो तो जो बच जाएगा ना वैसे आकार वाले मूषिकोदरे। फिर यादृक गगन संस्थान वैसे ही संस्थान लेकिन गगन जैसा आकाश जैसा अमूर्त संस्थान तदाकारम विभु स्मरे, इस प्रकार से विभु का स्मरण करना चाहिए भगवान। सर्वावयव संपूर्णम सर्वलक्षण लक्षितम विशुद्धादर्श संक्रांत प्रतिबिंब समप्रभम। सभी अवयवों से संपूर्ण, सर्वलक्षणों से लक्षित, विशुद्ध आदर्श यानी दर्पण में संक्रांत यानी पड़ने वाले प्रतिबिंब के समान प्रभाव वाले। इत्यसौ सतताभ्यासात इत्यसौ सतताभ्यास वशात संजात निश्चय अपि स्वप्नाद्यवस्थासु तमेवाध्यक्ष मीक्षते। इस प्रकार के सतत अभ्यास के प्रभाव से जिसको सिद्ध परमेष्ठी के बारे में निश्चय उत्पन्न हो चुका है, वह स्वप्न आदिक अवस्थाओं में भी उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता रहता है। सोहम सकल वित्सार वह सिद्ध साध्यो भवच्युत। परमात्मा परम ज्योति विश्वदर्शी निरंजन, वह मैं ही हूँ। सकल वित्त यानी सर्वज्ञ, सार्व यानी सबके लिए हितकारी, सिद्ध यानी सिद्ध और साध्य यानी साधने योग्य, और भवच्युत संसार से रहित परमात्मा परम ज्योति विश्वदर्शी निरंजन। तदासौ निश्चलो मूर्तो निष्कलंको जगद्गुरु चिन्मात्र प्रस्फुरत्युच्चैः ध्यातृध्यान विवर्जितः। उस समय जब ऐसा ध्यान लगाते हैं तब निश्चल अमूर्त निष्कलंक जगद्गुरु चिन्मात्र प्रस्फुरति खूब अच्छी तरह से प्रकाशमान हो जाता है, और उच्चैः उत्कृष्ट रूप से ध्याता और ध्यान का विकल्प समाप्त हो जाता है, उससे रहित हो जाते हैं। पृथक भाव अतिक्रम्य तथैक्यम परमात्मनि प्राप्नोति स मुनिः साक्षात् यथान्यत्वं न विद्यते। उस समय पृथक भाव का अतिक्रमण हो जाता है और परमात्मा में एक रूपता प्राप्त हो जाती है, और वे मुनि साक्षात ऐसे एक रूप हो जाते हैं कि जिससे अन्यपना बचता ही नहीं, वहाँ न विद्यते विद्यमान नहीं रह जाता। उत्तम चकहा भी निःकलह परमात्मा हम लोकालोकावभासक विश्वव्यापी स्वभावस्तु विकार परिवर्जित। मैं निष्कल परमात्मा हूँ, लोक और अलोक का अवभासक हूँ, प्रकाश लोक और लोकालोक को प्रकाशित करने वाला, विश्वव्यापी हूँ, स्वभाव में स्थित हूँ और विकारों से रहित हूँ। तथा च उक्तम कहा भी है, न चिंतय देहत्थम देहं च न चिंतये किम देहं च न चिंतये किमपि न सगय परगय रूपम तम गय रूपम निरालंबम। ये निरालंब ध्यान कहलाता है कि न तो देह में स्थित चिंतन करता है, न देह का चिंतन करता है, और न स्वगत या परगत रूप का चिंतन करता है, तो वो रूपा रूप रहित निरालंब ध्यान हो जाता है। जत्थण जानम जेयम जत्थण झाणम झेयम झायारो ने चिंतनम किम्पी न धारणा भी अपो हम झाणम सुप्त भाणिज्य। जहाँ ध्यान भी नहीं है, ध्येय भी नहीं है, ध्याता भी नहीं है, और न किसी प्रकार का चिंतन है, और न ही धारणा को संबंधी कोई विकल्प है, उसी को सुप्त भाणिज्य झाणम अच्छी तरह कहा हुआ ध्यान समझो। धर्म ध्यान से विज्ञेया स्थितिरांतर मुहूर्तिका क्षायोपिशमिको भावो लेश्या शुक्लैव शाश्वती। धर्म ध्यान का समय अंतर मुहूर्त ही जानना चाहिए, और वो क्षायोपिशमिक भाव है, लेश्या उस समय शुक्ल ही होती है, शाश्वती यानी पूरे समय धर्म ध्यान के समय शुक्ल लेश्या रहती है। ये विशेष बात, लेकिन ये उत्कृष्टता की अपेक्षा समझे, नरक की बात नहीं। यहाँ पर तो कौन सा ध्यान, रूपातीत ध्यान की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, इति रूपातीतम चतुर्थम ध्यान, कहाँ पर शुभ ले शब्द, ठीक है। अब नरक में सर्वार सिद्धि में तो लिखा, राजवार्तिक में भी लिखा है कि द्रव्य लेश्या तो जो है वो पूरे भाव पर्यंत एक ही रहती है, लेकिन भाव लेश्या जो होती है वो अंतर्मुहूर्त में परिवर्तनशील होती है। तो वो परिवर्तन के बारे में कुछ लोगों का ये अभिमत है कि बस उन्हीं कृष्ण लेश्या में ही सप्तम पृथ्वी की लेश्या परिवर्तन करेगी, मतलब उसके अंशों में ही परिवर्तन होगा, और फिर दूसरा ये भी उल्लेख मिलता है कि जब जीव सम्यक्त के अभिमुख होता है तब उसकी पीठ पद्म शुक्ल लेशिया हो जाती है। अब ये अपन निर्णय नहीं दे सकते। इस प्रकार धर्म ध्यान में जो रूपातीत ध्यान था उसका वर्णन हो गया। धर्म ध्यान वर्णन समाप्त। सवर से दिन का भावलेश्यास्तु अंतर्मुहूर्त परिवर्तन उसके अंशों में धर्म ध्यान तो इसी में था, दस ध्यान तो इसी में था, सवर सिद्धि में नहीं था, इसी में था। अतः शुक्ल ध्यान गाथा पंचकेन विशदयति। अब शुक्ल ध्यान को पांच गाथाओं के द्वारा विशद करते हैं, विशद करते हैं यानी स्पष्ट करते हैं। जत्थ गुणा सुविशुद्धा ओसम खमणम चत्थ कम माणम लेसा विजत्थ सुक्का तम सुक्कम भंडदे झाणम। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि धर्म ध्यान में लेशाएं अकेली शुक्ल होने का नियम नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में शुक्ल लेशा का नियम बता रहे हैं। अगर धर्म में ही अकेली शुक्ल हो जाती तो फिर शुक्ल में लेशा की चर्चा ही नहीं करते। क्या कह रहे, जहाँ गुण सुविशुद्ध हो जाते हैं और कर्मों का जहाँ पर उपशमक या फिर क्षपण हो जाता है और जहाँ लेशा भी शुक्ल रहती है, उस ध्यान को शुक्ल ध्यान कहते हैं। समयम सुज्जन्तु अनंत गुणिदाय उभय सुद्धिये पडमन सुक्कं जायदि आरूढो उभय सेढ़ीसु। उभय सेढ़ीसु आरूढो पड़ी समय सुज्जत, प्रति समय विशुद्ध होते हुए दो प्रकार की श्रेणियों पर आरूढ़ होने वाले मुनि अनंत गुणिदाय उभय शुद्धि, अनंत गुणित दोनों प्रकार की शुद्धियों से शुद्ध होते हुए परमम सुखम जायते प्रथम शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं। और दोनों शुद्धियां कौन सी है, कया उभय शुद्धियां, बोले अंतर बहिर निर्मलतया, अंतरंग शुद्धि बहिरंग शुद्धि, इन दोनों शुद्धियों से अनंत गुणी विशुद्धि से शुद्ध होते हुए। विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती है तो निर्जरा असंख्यात गुणी बढ़ती है। अथवा उपशमक श्रेण्यो अपूर्व कर्ण परिणामानां शुद्ध्या अनंत गुण विशुद्ध्या कीदृक्षयातया अनंत गुणितया पूर्व परिणामात उत्तर परिणाम अनंत गुण विशुद्धिया निर्मलतया वर्तमान है। पूर्व परिणामान उत्तर परिणाम पूर्व परिणामात तो होना चाहिए, उत्तर परिणाम षड गुण वर्धमान अतएव अनंत गुण का तया वर्धमान तथा ये उपशम विधानम तावत करते थे। ये सबसे महत्व की बात जो आ रही है यहाँ पर कि उपशम करने की जो प्रक्रिया है वो कैसे कर्मों का उपशम करके श्रेणी पर आरूढ़ होते हैं मुनिराज, उसका वर्णन है। वज्र वृषभ नाराच वज्र नाराच नाराच संगननेशु मध्य अन्यतम संगननस्थो भव्य वर पुंडरीक। ये तीन संगनन है ऊपर के उत्कृष्ट तीन संगनन, इनमें से अन्यतम संगननस्थो किसी एक संगनन में स्थित भव्य वर पुंडरीक भव्यों में श्रेष्ठ चतुर्थ पंचम षष्ठ षष्ठम म गलत छपी है षष्ठ होना चाहिए सप्तमेशु गुणस्थानेशु चौथा पांचवा छठा या सातवां इन चार गुणस्थानों में से मध्य अन्यतम गुणस्थाने किसी एक गुणस्थान में, अनंतानुबंधी चतुष्कस्य मिथ्यात्व प्रकृति तयस्य, अनंतानुबंधी चार और मिथ्यात्व की तीन प्रकृतियाँ, इनका जो करण विधान ही धर्म ध्यान बले ने, करण विधान माने करण की एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा धर्म ध्यान के बल से उपशमं कृत्वा, उपशम करके उपशम सम्यक दृष्टि भवति, उपशम सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। ये द्वितीय उपशम की चर्चा है, क्योंकि अगर मिथ्यात्व से उपशम सम्यक दृष्टि बनाएंगे तो फिर ये चौथे गुणस्थान से ये बात ही नहीं रहेगी। ये चौथे गुणस्थान में अगर वो उपशम करके बन रहे हैं तो फिर वो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि है, चाहे उपशमिक सम्यक दृष्टि है, अब इन सबका उपशम कर डालेंगे, उपशम सम्यक दृष्टि भवति। और सप्तानाम एतासाम, इन सात प्रकृति नाम क्षयं कृत्वा, इन सात प्रकृतियों का क्षय करके क्षयिक सम्यक दृष्टिर्भवति वा, क्षयिक सम्यक दृष्टि भी बन सकता है। सात का उपशमन कर लिया तो उपशम सम्यक दृष्टि बन गया, अथवा क्षय कर दिया तो क्षयिक सम्यक दृष्टि बन सकती। इन्हीं चार गुणस्थानों में होगा दोनों का अर्थ, उपशम द्वितीय उपशम भी यहाँ पर होगा इन चार गुणस्थानों में, और क्षय भी इन्हीं चार गुणस्थानों में होगा। ततः उसके बाद अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती सातवें गुणस्थान में उपशम श्रेण्यारोहण प्रत्यभिमुखो भवति, उपशम श्रेणी के आरोहण के प्रति अभिमुख हो जाता है। तदा तब कर्णत्रय मध्य दह प्रवृत्त करण करोगे, तीन करणों में अदह प्रवृत्त करण नाम का जो करण है वो कर डालते हैं। सही वो सातिशय अप्रमत्त उच्यते, उन्हीं को सातिशय अप्रमत्त कहा जाता है। स अप्रमत्त मुनि, सातिशय अप्रमत्त का अर्थ क्या है कि जो अभी श्रेणी के अभिमुख चले गए, माने अभी सातवें के ऊपर चले जाएंगे, वो सातिशय अप्रमत्त। स अप्रमत्त मुनि, वो अप्रमत्त मुनि अपूर्वकर्ण गुणस्थाने, अपूर्वकर्ण गुणस्थान में यानी अष्टम गुणस्थान में उपशम श्रेणी मारूढ़, उपशम श्रेणी पर आरूढ़ हो चुके हैं, वहाँ पर पृथक वितर्क विचार शुक्ल ध्यान बलेन, पहला जो शुक्ल ध्यान है उसका नाम पृथक वितर्क विचार है, उसके बल से प्रतिसमयानंत गुण विशुद्धिया, प्रति समय की अनंत गुणी विशुद्धि से वर्तमान है, वर्तमान है और प्रति समय मसंख्यात गुण श्रेण्य, म छूट गया उस बीच में, प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी प्रदेश निर्जराम करोति, प्रदेश निर्जरा करते हैं, असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहे हैं, मसंख्यात होना चाहिए, ये तो प्रति समय संख्यात गुण श्रेणियां तो बनेगा नहीं, क्योंकि वो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का एक विशिष्ट स्थान है। तत्र अंतर्मुहूर्त कालम स्थित्वा ततः, वहाँ पर अंतर्मुहूर्त काल ठहर कर फिर अनिवृत्ति गुणस्थानोपशमक श्रेण्यारूढ़ उपशमको मुनि, फिर नवे गुणस्थान में उपशमक श्रेणी पर आरूढ़ उपशमक मुनि रहते हैं वो, तो वहाँ पर पृथक वितर्क विचार शुक्ल ध्यान बलेन, उसी शुक्ल ध्यान प्रथम शुक्ल ध्यान के बल से अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन क्रोधमान माया लोभ हास्यादि नव नौकषाया, इन इतने सारे कर्म प्रकृतियों का इत्येक विंशति चारित्र मोहनीय प्रकृति ही उपशमयन, इस प्रकार 21 चारित्र मोह कर्म की प्रकृतियों का उपशमन करते हुए अंतर्मुहूर्त काल स्थितिम कुर्वन, अंतर्मुहूर्त काल की स्थिति करते हुए तथा उसके पश्चात सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान उपशमक श्रेण्यारूढ़, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में उपशम श्रेणी पर आरूढ़ रहते हुए सूक्ष्म कृष्टिगत, अब वो करते उपशम करते 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 तो कुछ कृष्टि विधान होता है वहाँ पर, बादर कृष्टि सूक्ष्म कृष्टि, तो सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त हुए लोभानुरागोदया अनुभवन, लोभ संबंधी अनुराग के उदय का अनुभव करते हुए सूक्ष्म किट्टिका स्वरूपम, सूक्ष्म किट्टिका स्वरूप लोभम वेदयन, लोभ का वेदन करते हुए प्रथम शुक्ल ध्यान बलेन, प्रथम शुक्ल ध्यान के बल से सूक्ष्म सांप्रायोपशमक, सूक्ष्म सांप्राय उपशमक मुनि स्वचरम समय अपने अंतिम समय में माने दसवें गुणस्थान के अंतिम समय में लोभ संज्वलनम सूक्ष्म किट्टिका स्वरूप निशेषम उपशमयति, जो सूक्ष्म किट्टिका स्वरूप लोभ है संज्वलन लोभ उसको पूर्णतः शांत कर डालते हैं। तत उसके आगे उपशांत कषाय गुणस्थानोपशम श्रेण्यारूढ़। ग्यारहवें गुणस्थान में उपशम श्रेणी पर आरूढ़ वही मुनि पृथक तो वितर्क विचार शुक्ल ध्यान परिणत सन, उसी पहले शुक्ल ध्यान में परिणत होते हुए एक विंशति 21 चरित्र मोहनीय प्रकृतिर निरवशेषम उपशमय्य, 21 चरित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियों का निरवशेष यानी पूर्णतः उपशमन करके यथाख्यात चरित्रधारी स्यात्, यथाख्यात चरित्र के धारक हो जाते हैं।